एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं स्टीवन पिंकर की एक बेहद चर्चित और प्रभावशाली किताब में, द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, यानी भाषा एक सहज वृत्ति। ये किताब भाषा के बारे में हमारी कई आम धारणाओं पर सवाल खड़े करती है।
बिल्कुल, और ये सवाल आज के दौर में बहुत मायने रखते हैं ना। हम सब दिन भर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बातचीत, संदेश, सोशल मीडिया, पर ये जुबान, ये बोलने की क्षमता, ये आती कहाँ से है? क्या ये बस हमने अपने बड़ों से सीखी है या कुछ और गहरा चल रहा है? पिंकर हमें इसी गहराई में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि भाषा को समझना सिर्फ भाषा विज्ञानियों का काम नहीं, ये खुद को, मतलब इंसान होने के मतलब को समझने का एक अहम हिस्सा है।
सही कहा। तो इससे पहले कि हम किताब के विचारों में उतरें, लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। स्टीवन पिंकर एक कनाडाई अमेरिकी संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक और भाषाविद हैं। जब ये किताब आई थी 1994 में, तब वो MIT में थे और अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनकी खासियत है देखने समझने की प्रक्रिया, मतलब विजुअल कॉग्निशन, और खासकर भाषा अधिग्रहण, लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, इस पर उनका गहरा शोध है।
हाँ, और पिंकर की एक खास बात है उनका नजरिया। वो नोआम चॉम्स्की के क्रांतिकारी विचारों से काफी प्रभावित है। चॉम्स्की ने ही कहा था कि भाषा सीखने की क्षमता हमारे अंदर जन्मजात होती है, लेकिन पिंकर सिर्फ वहीं नहीं रुकते। वो चॉम्स्की के यूनिवर्सल ग्रामर के विचार को विकासवाद, एवोल्यूशन और दिमाग के विज्ञान, मतलब न्यूरोसाइंस से जोड़ते हैं। वो सिर्फ सिद्धांत नहीं गढ़ते, बल्कि प्रयोगशाला में बच्चों पर किए गए प्रयोगों और असली दुनिया के उदाहरणों से अपनी बात साबित करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी खूबी, वो इन मुश्किल वैज्ञानिक आइडियाज़ को बड़ी आसानी से, दिलचस्प और थोड़ी मज़ेदार भाषा में आम लोगों तक पहुँचा देते हैं।
बिल्कुल, और यही इस किताब को इतना खास बनाता है। किताब का जो मूल विचार है वो अपने आप में काफी क्रांतिकारी है। पिंकर कहते हैं कि भाषा कोई सांस्कृतिक आविष्कार नहीं है, जैसे हम पढ़ना लिखना या साइकिल चलाना सीखते हैं। नहीं, भाषा एक जैविक वृत्ति है, एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट। ठीक वैसे ही जैसे मकड़ी को जाला बुनना या चिड़िया को घोंसला बनाना सिखाना नहीं पड़ता, वो उनके अंदर से आता है।
हाँ, और ये विचार सीधे सीधे उस सोच को चुनौती देता है जिसे अकादमिक दुनिया में स्टैंडर्ड सोशल साइंस मॉडल कहा जाता है। वो मॉडल मानता था कि इंसान का दिमाग जन्म के समय एक कोरी स्लेट, एक ब्लैंक स्लेट जैसा होता है, और भाषा समेत सब कुछ हम अपने माहौल, अपनी संस्कृति से सीखते हैं। पिंकर कहते हैं, नहीं, भाषा के मामले में ऐसा नहीं है। हमारे दिमाग में भाषा का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट पहले से मौजूद है।
तो पिंकर का मुख्य तर्क क्या है? वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचते हैं? मतलब क्या क्या वजह देते हैं?
उनका तर्क कई तर्कों के एक मजबूत कड़ी है। असल में सबसे पहले वो कहते हैं कि हम इंसान एक सहज सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर, UG, के साथ पैदा होते हैं। सोचिए, ये जैसे भाषा का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे दिमाग में पहले से इंस्टॉल्ड है। दूसरा, यही UG बच्चों को कमाल की तेजी और सटीकता से अपनी मातृभाषा सीखने में मदद करता है, बिना किसी खास ट्रेनिंग के। और तीसरा, पिंकर भाषा को प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का नतीजा मानते हैं। यानी लाखों सालों के विकास के दौरान भाषा की क्षमता धीरे धीरे विकसित हुई, क्योंकि इससे हमारे पूर्वजों को संवाद करने, सहयोग करने और जिंदा रहने में मदद मिली। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक जरूरी विकासवादी अनुकूलन, एक अडेप्टेशन है।
अच्छा, तो किताब का मकसद है भाषा के पीछे छिपे विज्ञान को उजागर करना, आम धारणाओं और मिथकों को तोड़ना। जैसे ये सोचना कि हमारी भाषा हमारी सोच को कंट्रोल करती है, या व्याकरण के नियम पत्थर की लकीर हैं। पिंकर हमें एक तरह से भाषा की पूरी फैक्ट्री का टूर कराते हैं। आवाजें कैसे बनती हैं और समझी जाती हैं, शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे जुड़ते हैं, दिमाग में भाषा का अड्डा कहाँ है, और ये सब शुरू कैसे हुआ।
बिल्कुल, चलिए तो अब इन विचारों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पिंकर अपनी बात की शुरुआत ही इस दावे से करते हैं कि भाषा एक वृत्ति है। वो मकड़ी के जाले वाली मिसाल देते हैं। जैसे मकड़ी को कोई सिखाता नहीं, वो बस बुनना जानती है, वैसे ही इंसान बोलना जानता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वो बोलने की बात कर रहे हैं, लिखने की नहीं। लिखना एक टेक्नोलॉजी है जिसे सीखना पड़ता है, जबकि बोलना हमारे अंदरूनी स्वभाव का हिस्सा है।
और इसी से जुड़ा है बच्चों के भाषा सीखने का चमत्कार, है ना? पिंकर इसे समझाने के लिए उद्दीपन की गरीबी या पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस का तर्क देते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे अपने आसपास जो भाषा सुनते हैं वो अक्सर अधूरी, टूटी फूटी और गलतियों से भरी होती है। माँ बाप या बड़े लोग हमेशा परफेक्ट व्याकरण में बात नहीं करते, फिर भी इस सीमित और गड़बड़ इनपुट से बच्चे एक पूरा जटिल और ज्यादातर सही व्याकरण सिस्टम कैसे बना लेते हैं? पिंकर कहते हैं कि ये तभी मुमकिन है जब उनके दिमाग में पहले से कोई खाका मौजूद हो।
बिल्कुल, और बच्चे सिर्फ तोते की तरह रटते नहीं हैं, उनकी गलतियां भी उनके सीखने का सबूत होती हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा गया की जगह जाया बोलता है, ये अंग्रेजी का उदाहरण है पर हिंदी में भी ऐसा होता है, तो ये दिखाता है कि उसने भूतकाल बनाने का नियम, जैसे अंग्रेजी में ईडी लगाना, पकड़ लिया है और उसे हर क्रिया पर लागू कर रहा है। भले ही जाना एक अनियमित क्रिया है, वो नियम बना रहा है, न कि सिर्फ सुनी सुनाई बातें दोहरा रहा है।
इसका एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है क्रियोल भाषाओं का बनना। निकारागुआ में कुछ दशक पहले अलग अलग घरों से आए बधिर बच्चे, जिनकी कोई एक सांकेतिक भाषा नहीं थी, जब एक स्कूल में मिले तो उन्होंने आपस में बातचीत करने के लिए इशारों की एक काम चलाऊ व्यवस्था, एक पिजिन बनाई। लेकिन अगली पीढ़ी के बच्चों ने, जो इस काम चलाऊ व्यवस्था को सीखते हुए बड़े हुए, उन्होंने उसे खुद ब खुद एक पूरी व्यवस्थित और जटिल व्याकरण वाली नई सांकेतिक भाषा में बदल दिया, निकारागुआन साइन लैंग्वेज। ये दिखाता है कि इंसानी दिमाग में व्याकरण रचने की एक अंदरूनी क्षमता होती है।
हाँ, और ये भी देखिए कि दुनिया भर के बच्चे, चाहे वो कोई भी भाषा सीख रहे हों, लगभग एक जैसे चरणों से गुजरते हैं। पहले बड़बड़ाना, फिर एक एक शब्द बोलना, फिर दो शब्दों वाले वाक्य बनाना, जैसे मम्मी दूध, गाड़ी गई। ये सार्वभौमिकता भी भाषा के जैविक आधार की तरफ इशारा करती है।
तो ये तो हुई सीखने की अद्भुत क्षमता, लेकिन ये भाषा जो हम सीखते हैं, इसकी बनावट कैसी है, ये काम कैसे करती है, पिंकर इसकी मशीनरी को कैसे खोलते हैं?
यहाँ पिंकर भाषा के तीन मुख्य हिस्सों पर ध्यान देते हैं, वाक्य रचना सिंटैक्स, शब्द रचना मॉर्फोलॉजी और ध्वनि विज्ञान फोनोलॉजी। सिंटैक्स के बारे में वो कहते हैं कि ये एक असतत संयोजी प्रणाली है, डिस्क्रीट कॉम्बिनेटोरियल सिस्टम। सुनने में भारी लगता है पर इसका मतलब सीधा है, हमारे पास सीमित संख्या में शब्द और नियम होते हैं, लेकिन हम उन्हें जोड़कर अनगिनत, कभी ना खत्म होने वाले नए वाक्य बना सकते हैं। और वाक्य सिर्फ शब्दों की लाइन नहीं होते, उनकी एक अंदरूनी बनावट होती है, एक पेड़ जैसी संरचना, हायरार्कल स्ट्रक्चर, जिसमें शब्द समूहों में जुड़े होते हैं।
अच्छा, और शब्द कैसे काम करते हैं? हमारे दिमाग में शब्दों का क्या हिसाब किताब है?
पिंकर बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक तरह का मानसिक शब्दकोश होता है, मेंटल लेक्सिकन, जहाँ हजारों शब्द और उनके अर्थ जमा होते हैं। लेकिन साथ ही हमारे पास शब्द बनाने के नियम भी होते हैं, मॉर्फोलॉजी। इसका एक क्लासिक उदाहरण है वग टेस्ट, WUG टेस्ट। बच्चों को एक अजीब से दिखने वाले काल्पनिक जीव की तस्वीर दिखाई जाती है और कहा जाता है ये एक वग है, WG वग। फिर दो वग की तस्वीर दिखाकर पूछा जाता है अब यहाँ दो हैं। कमाल की बात है कि छोटे बच्चे भी, जिन्होंने वग शब्द पहले कभी नहीं सुना, फौरन जवाब देते हैं वग्स।
हाँ,
ये दिखाता है कि उन्होंने बहुवचन बनाने का नियम, अंग्रेजी में एस लगाना, सीख लिया है और उसे नए शब्दों पर भी लागू कर सकते हैं। वो नियम जानते हैं, सिर्फ शब्द नहीं रटते।
और आवाजों का क्या, हम बोली जाने वाली भाषा को कैसे समझ लेते हैं, जबकि वो तो बस हवा में ध्वनियों का एक लगातार बहता हुआ समंदर है।
सही कहा, ये ध्वनि विज्ञान यानी फोनोलॉजी का कमाल है। पिंकर समझाते हैं कि कैसे हमारा वाक् तंत्र, वोकल ट्रैक्ट, तरह तरह की ध्वनियां पैदा कर सकता है और कैसे हमारा दिमाग इन ध्वनियों की धारा को लगातार प्रोसेस करता है, उन्हें अलग अलग सार्थक ध्वनियों, फोनेम्स में तोड़ता है, शब्दों को पहचानता है और वाक्यों का मतलब निकालता है। ये एक बेहद जटिल प्रक्रिया है जो हम बिना किसी कोशिश के पल भर में कर लेते हैं, यहाँ तक कि शोरगुल वाले माहौल में भी।
अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल आता है जिसका पिंकर जवाब देते हैं। क्या हमारी भाषा हमारी सोच को तय करती है? क्या हम जिस भाषा में बोलते हैं उसी में सोचते भी हैं?
ये एक बहुत पुरानी बहस है जिसे सापीर-वर्फ परिकल्पना यानी सापीर-वर्फ हाइपोथेसिस कहते हैं। ये परिकल्पना मानती है कि भाषा हमारी सोच की सीमाओं को तय करती है, लेकिन पिंकर इस विचार का जोरदार खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सोच भाषा से पहले आती है और उससे आजाद है। हम हिंदी, अंग्रेजी या किसी और भाषा में नहीं सोचते, बल्कि एक सार्वभौमिक मन की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ थॉट में सोचते हैं, जिसे वो मजाक में मेंटलीज कहते हैं। भाषा तो बस इस मेंटलीज को दूसरों तक पहुंचाने का एक जरिया है।
मेंटलीज, दिलचस्प है।
हाँ, और इसके सबूत में वो कहते हैं कि हम बिना शब्दों के भी सोच सकते हैं, जैसे गणितीय तर्क, संगीत की रचना या किसी रास्ते की कल्पना करना। जानवर भी सोचते हैं और छोटे बच्चे जो अभी बोलना नहीं सीखे वो भी सोचते और सीखते हैं।
तो अगर सोच भाषा से अलग है और भाषा एक वृत्ति है, तो क्या दिमाग में इसके लिए कोई खास जगह या सिस्टम है?
हाँ, और इसके लिए पिंकर तंत्रिका विज्ञान न्यूरोसाइंस से काफी सबूत पेश करते हैं। दो खास इलाकों का जिक्र आता है, ब्रोका क्षेत्र और वर्निक क्षेत्र, जो आमतौर पर दिमाग के बाएं हिस्से में होते हैं। जब इन इलाकों में चोट लगती है तो लोगों को अलग अलग तरह की भाषा संबंधी दिक्कतें आती हैं, जिसे अफेजिया कहते हैं। ब्रोका फेजिया वाले लोग व्याकरण सही नहीं बना पाते, उनकी बोली अटकती है, लेकिन वो बातों को समझ सकते हैं। जबकि वर्निक अफेजिया वाले लोग व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य तो बोल लेते हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई मतलब नहीं निकलता और उन्हें दूसरों की बातें समझने में भी दिक्कत होती है। ये दिखाता है कि भाषा दिमाग की एक खास प्रणाली है, ये बस सामान्य बुद्धि का हिस्सा नहीं है।
और क्या इसका कोई जीनेटिक कनेक्शन भी है, मतलब जीन से जुड़ाव?
बिल्कुल। पिंकर विशिष्ट भाषा हानि यानी स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट SLI का उदाहरण देते हैं। ये एक आनुवांशिक स्थिति है जहां बच्चे की बाकी दिमागी क्षमताएं तो सामान्य होती हैं, लेकिन उसे भाषा सीखने और इस्तेमाल करने में खास दिक्कत आती है, खासकर व्याकरण के नियमों में। ब्रिटेन के परिवार का मामला बहुत मशहूर है, जिनके कई सदस्यों में भाषा की गंभीर समस्या थी और बाद में उनमें FOXP2 नाम के जीन में एक गड़बड़ी पाई गई। ये सब सबूत दिमाग की मॉड्यूलैरिटी यानी मॉड्यूलैरिटी ऑफ माइंड के विचार को बल देते हैं कि हमारा दिमाग शायद अलग अलग खास कामों के लिए बने हिस्सों या मॉड्यूल से बना है, और भाषा ऐसा ही एक मॉड्यूल है।
लेकिन एक सवाल फिर उठता है, अगर भाषा एक सहज वृत्ति है और सबके दिमाग में एक यूनिवर्सल ग्रामर का खाका है, तो फिर दुनिया में इतनी सारी करीब 6000 से 7000 अलग अलग भाषाएं क्यों हैं? ये विविधता कैसे आई?
पिंकर समझाते हैं कि ये विविधता काफी हद तक सतही है। जैसे इंसानों की नस्लें दिखने में अलग हो सकती हैं, लेकिन अंदरूनी शारीरिक बनावट एक जैसी होती है, वैसे ही भाषाओं के बाहरी रूप, शब्द, उच्चारण, कुछ व्याकरण के नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर का ढांचा, वो यूनिवर्सल ग्रामर, एक जैसा ही होता है। भाषाएं समय के साथ बदलती हैं, जैसे जीव जंतुओं की प्रजातियां बदलती हैं। लोग अलग अलग जगहों पर बसते हैं, संपर्क टूटता है और धीरे धीरे उनकी भाषाएं अलग दिशाओं में विकसित होने लगती हैं। लेकिन वो बुनियादी सिद्धांत जैसे संज्ञा और क्रिया का होना, वाक्यों की संरचना, ये सब बने रहते हैं।
और इसी से जुड़ा है भाषा के नियमों का सवाल। पिंकर उन भाषा पंडितों की भी आलोचना करते हैं जो भाषा की शुद्धता पर बहुत जोर देते हैं और बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत।
हाँ, ये एक जरूरी मुद्दा है। पिंकर दो तरह के व्याकरण में फर्क करते हैं, डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक और प्रिस्क्रिप्टिव यानी आदेशात्मक। डिस्क्रिप्टिव व्याकरण ये बताता है कि लोग असल में भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है। प्रिस्क्रिप्टिव व्याकरण ये बताता है कि लोगों को भाषा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये अक्सर सामाजिक पसंद नापसंद और परंपरा पर आधारित होता है। पिंकर का कहना है कि बहुत सारे नियम जिन्हें स्कूलों में सही व्याकरण कहकर पढ़ाया जाता है, जैसे अंग्रेजी में इन्फिनिटिव को स्प्लिट ना करना या वाक्य के अंत में प्रेपोजिशन ना लगाना, वो तार्किक रूप से बेबुनियाद और मनमाने हैं।
वो भाषा के स्वाभाविक सहज नियमों की वकालत करते हैं जो बोलने वाले खुद इस्तेमाल करते हैं।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस किताब के मुख्य संदेश क्या उभर कर आते हैं? मुझे लगता है पहला और सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि भाषा कोई सांस्कृतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारी जैविक विरासत है, एक सहज वृत्ति।
बिल्कुल। दूसरा, हम सब एक सार्वभौमिक व्याकरण UG के साथ पैदा होते हैं जो सभी भाषाओं की नींव में है। तीसरा, दिमाग में भाषा के लिए खास इंतजाम है, ये दिमाग की मॉड्यूलैरिटी का सबूत है।
चौथा, बच्चे भाषा सीखने में कमाल के होते हैं, वे सिर्फ नकल नहीं करते बल्कि सक्रिय रूप से व्याकरण का निर्माण करते हैं। हम भारत में देखते हैं कि बच्चे कैसे आसानी से 2-3 भाषाएं एक साथ सीख लेते हैं, ये उनकी इसी जन्मजात क्षमता का प्रमाण है।
सही बात है। पांचवां, हमारी सोच भाषा की गुलाम नहीं है, हम एक गहरी शायद सार्वभौमिक मन की भाषा यानी मेंटलीज में सोचते हैं। छठा, हमें भाषा के स्वाभाविक रूप यानी लोग असल में जैसे बोलते हैं उनकी बोलियां, रोजमर्रा की भाषा, उसकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि सिर्फ किताबी और बनावटी नियमों के पीछे पढ़ना चाहिए। जैसे भारत में हिंग्लिश या अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों को लेकर बहस होती है, उन्हें इस नज़रिए से देखना चाहिए।
हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और सातवां, भाषा कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं, बल्कि लाखों सालों के विकास एवोल्यूशन का नतीजा है, जिसने इंसानों को इतनी तरक्की करने में मदद की।
इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे पिंकर का ये कहना कि पैराफ्रेज्ड, भाषा कोई सांस्कृतिक कलाकृति नहीं है जिससे हम समय देखना या संघीय सरकार के बारे में जानना सीखते हैं, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की जैविक बनावट का एक विशिष्ट हिस्सा है। ये बच्चे में सहज रूप से विकसित होती है। ये पूरी किताब का सार है एक तरह से।
बिल्कुल, या ये विचार कि सार्वभौमिक व्याकरण का मतलब है कि बच्चों के दिमाग में व्याकरण बनाने का एक खाका पहले से मौजूद है, जो उन्हें सुनी हुई कच्ची पक्की भाषा से नियम निकालने में मदद करता है। ये बच्चों की प्रतिभा को कितनी अच्छी तरह उजागर करता है।
और भाषा बनाम विचार पर ये सोचना कि भाषा हमारी सोच को तय करती है, गलत है। लोग भाषा में नहीं सोचते, बल्कि विचारों की एक अलग भाषा मेंटलिस्ट में सोचते हैं। यह हमारी साझा इंसानी समझ की बात करता है ना?
सही। और नियमों के बारे में?
सही अंग्रेजी या हिंदी के नियम भाषा के स्वाभाविक नियम नहीं हैं, वे अक्सर मनमानी परंपराएं होती हैं जिन्हें कुछ लोगों ने थोप दिया है। ये हमें नियमों पर सवाल उठाना सिखाता है।
और बच्चों के बारे में वो लाइन?
एक 3 साल का बच्चा व्याकरण का जीनियस होता है। ये बच्चों की क्षमता को कितनी खूबसूरती से बयां करता है ना?
हाँ, वाकई। तो इन सब गहरी बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इन विचारों से क्या सीख सकते हैं?
कई चीजें, जैसे बच्चों की परवरिश में जब बच्चा गलत व्याकरण बोलता है तो उसे डांटने की बजाय ये समझें कि वो नियम सीखने की कोशिश कर रहा है। उसे ज्यादा से ज्यादा अच्छी और अलग अलग तरह की भाषा सुनने का मौका दें। शिक्षा में भी ये समझना जरूरी है कि बोलना स्वाभाविक है, पर लिखना और पढ़ना सीखना पड़ता है, उसमें मेहनत लगती है। दूसरी भाषा सीखना वयस्कों के लिए क्यों मुश्किल होता है, ये भी हम बेहतर समझ सकते हैं।
सामाजिक तौर पे भी इसका असर है। हमें किसी की बोली या लहजे के आधार पर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। हर बोली का अपना सिस्टम होता है, अपना तर्क होता है। यह हमें ज्यादा सहिष्णु बनाता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि दुनिया में इतनी विविधता के बावजूद हम सब इंसानों में भाषा की एक गहरी साझा क्षमता है। और हाँ, ये आलोचनात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है। सिर्फ इसलिए किसी नियम को ना माने क्योंकि वो नियम है, बल्कि उसके पीछे का तर्क देखें।
बिल्कुल। और तकनीक के क्षेत्र में, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP में भी पिंकर के विचार अहम है। ये समझना कि इंसानी भाषा कितनी जटिल और सहज ज्ञान पर आधारित है, ये जानने में मदद करता है कि मशीनों के लिए इसे सही मायने में समझना या इस्तेमाल करना इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है। उनमें वो जन्मजात यूजी नहीं होता, वो पैटर्न सीखते हैं बस।
मेरे इस किताब से सबसे बड़ा सबक ये है कि भाषा, जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं और अक्सर हल्के में लेते हैं, वो दरअसल कितना बड़ा चमत्कार है। ये सिर्फ बातचीत का औजार नहीं, बल्कि हमारे दिमाग, हमारे विकास और हमारे इंसान होने का सबूत है। और बच्चों को भाषा सीखते देखना, वो अब और भी अद्भुत लगता है।
हाँ, मेरे लिए मेंटलिस्ट का विचार सबसे ज्यादा असरदार रहा। ये सोचना कि हमारी सोच भाषा की मोहताज नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी और शायद सार्वभौमिक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ ही अलग अलग बोलियों और भाषाओं के स्वाभाविक रूप का सम्मान करने की सीख भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो चलिए, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो पिंकर के विचारों से ही निकलता है। अगर भाषा वाकई एक गहरी जैविक वृत्ति है, तो क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी इंसानी भाषा की तरह रचनात्मक, सहज और भावनात्मक रूप से बारीक हो पाएगा, या वो हमेशा एक बाहरी नकल ही बना रहेगा? सोचने वाली बात है।
हाँ, बिल्कुल। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।